और अल्लाह किस पे मेहरबान हुआ? ये तो ताब अल्लाह है ना, ये अल नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, ये तीन हो गए। और चौथे यहाँ पे अगली आयत में आ रहे हैं। पहले उनकी उनकी एक्सप्लेनेशन आई, कौन से वाले मुहाजिरीन और अंसार जिन्होंने सआत अल उसरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, यानी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये नहीं कहा हमने नहीं जाना, हमसे नहीं जाया जाता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वो साथ रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इतने मुश्किल हालात में भी, जबकि उनके दिल करीब थे कि कजी की तरफ मायल हो जाते, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा आपका। और अल्लाह ताला किस पे मेहरबान हुआ? वह आला सलासती, और तीन पर अल्लाह ताला मेहरबान हुआ। अल्लदीन खुल्लिफू, जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया, जिनका मामला डिले कर दिया गया। ये तीन लोग कौन थे जिनका मामला डिले हुआ? ये तीन सहाबाए कराम है, और इनकी स्टोरी आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इनकी क्या स्टोरी थी। और इनकी तौबा की वजह से ही इस सूरह का नाम सूरह तौबा है। ठीक है, तो ये सहाबा जो थे, इनके भी ईमान में कोई शक नहीं है, ये बड़े ईमान वाले सहाबा कराम हैं, बड़े दर्जे वाले सहाबा कराम हैं। मगर कभी इंसान के साथ क्या होता है, ये हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, क्योंकि ये इनमें से एक सहाबी लैलतुल उकबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, यानी वो जो काब बिन मालिक थे, वो उस वह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी ना हिजरत से पहले हज के मौके पे, उसमें भी साथ थे। तो इसलिए ये जो आप देखेंगे सारी कि इनके साथ क्या बातें हुई, क्या क्या इनके साथ मामला हुआ। तो ये काब बिन मालिक थे, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबिया, ये तीन सहाबी हैं जिनकी बात हो रही कि अल्लाह ताला ने इनकी तौबा भी कबूल कर ली, इनकी तरफ मेहरबान हो गया। किस वक्त कब तौबा कबूल की? हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्द, जब तंग हो गई इनके ऊपर जमीन। कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं इंसान के लिए ना, कि उसको लगता है कि जमीन अपनी वुसत के बावजूद, बीमा रहा बावजूद इसके कि वो खुली थी, जमीन कितनी बड़ी है, लेकिन कभी कभी एक इंसान को भी लगता है कि मेरे लिए तंग हो गई है, हालांकि करोड़ों अरबों लोग उसके ऊपर रह रहे हो, लेकिन उसको लगता है मेरे लिए तंग हो गई है, हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं। वदाकत अलैहिम अनफुसुहुम, और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गई, यानी इंसान को फिर अपनी जान भी भारी लगने लगती है, ये हाल हो जाता है। वदन्नु, और उन्होंने जान लिया, उन्होंने यकीन कर लिया, अल्ला मलजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, अल्लाह ताला से भागने की तो कोई जगह ही नहीं, उससे एस्केप नहीं है कोई, इल्ला इलैह मगर उसी की तरफ, पनाह उसकी उससे ही मिलनी है, उससे भाग के कहीं नहीं जा सकते। सुम्मा तब अलैहिम लियतूबू, फिर वो मेहरबान हुआ उन पर, लियतूबू ताकि वो तौबा करें। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह की मेहरबानी होती है तो इंसान को तौफीक मिलती है तौबा की। अल्लाह की मेहरबानी ना हो तो बड़े बड़े गुनाह करके भी लोगों को तौफीक नहीं होती कि वो तौबा इस्तगफार कर लें, वो पलट आए अल्लाह की तरफ, वो रुजू कर लें। तो अल्लाह ताला मेहरबान हुआ उन पर ताकि वो तौबा करें, ताकि वो पलट आए उसकी तरफ। इन्नल्लाह हुवत तव्वाब रहीम, बेशक अल्लाह ताला तो बहुत तौबा कबूल करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। तो अब इनकी जरा स्टोरी देख लेते हैं कि इनकी स्टोरी क्या थी, और ये हम स्टोरी हजरत काब की ही जुबानी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ये अपना वाकया खुद बताया। क्या फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने गजवात में शिरकत की, मैं उनमें सब में था सिवाय तबूक के, उसमें नहीं था। और अलबत्ता बदर का वाकया चूंकि अचानक पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको उसमें शरीक होने का भी हुक्म नहीं दिया था, और शरीक होने वालों ना होने वालों पे कोई सख्ती भी नहीं की थी, तो इसमें नहीं शरीक होते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले थे बदर के लिए तो जंग तो उस वक्त प्रोग्राम में नहीं थी शामिल, तो उसमें नहीं ये शामिल हुए थे। और मैं लैलतुल अकबा की बैत में भी हाजिर था, जिसमें हमने इस्लाम की हिमायत और हिफाजत का मुआहदा किया था, और मुझे ये बैत की हाजिरी गजवा बदर की हाजिरी से भी ज्यादा महबूब है। अगरचे बदर वाले लोगों ज्यादा मशहूर हैं, जाहिर है उनकी तो बहुत फजाइल बयान किए गए हैं। और मेरा वाकया गजवा तबूक में हाजिरी का ये हुआ कि मैं किसी वक्त भी इससे ज्यादा खुशहाल और मालदार ना था, यानी अच्छे खाते पीते थे, औसत मालदार थे, बाखुदा मेरे पास कभी इससे पहले दो सवारियां जमा नहीं हुई थी जो इस वक्त मौजूद थे। यार आप देखेंगे ये जो माल को फितना कहा गया ना, कोई वजह है इसकी। वाकई जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो भी एक इम्तिहान है, लेकिन वो कम इम्तिहान है, या थोड़ा होता है ना तो कम इम्तिहान है। जितना ज्यादा हो जाता है इम्तिहान बढ़ जाता है। हम खुश होते हैं ना कि हमें और ज्यादा मिल गया, और मिले और मिले, और उसकी हिर्स भी करते हैं, लेकिन ज्यादा होना बाज दफा इंसान को अपने अंदर इतना मशगूल कर लेता है कि वो अल्लाह के कामों से भी जाता है, और ये अक्सर होता है आप देखें। वरना अगर आप सोचें कि अगर माल की ना फिक्र हो, अगर रोजगार की ना फिक्र हो, तो पता नहीं मैं कितने बड़े बड़े दीन के काम करूं, ऐसा अक्सर होता नहीं है। जिनके पास माल है आप देखें उतने ही ज्यादा, अक्सरियत उनमें उतने ही ज्यादा दीन से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कुरान पाक में मुतरफीन की बात आती है ना, जो खुशहाल लोग किसी कौम में से भी खुशहाल लोग सबसे पहले नबियों के अगेंस्ट खड़े होते थे। तो खुशहाली डजंट मीन कि आप खुशहाल हैं तो अब आपको बड़ा टाइम मिल जाएगा और बड़े दीन की खिदमत करेंगे, नहीं। खुशहाली लग्जरीज लाती है, लग्जरीज अपने अंदर खींच लेती हैं। इंसान आराम तलबी चाहता है, आराम चाहता है, इंसान आराम और आसाइशों के अंदर खो जाता है, इंसान खाने पीने और इन चीज़ों के अंदर ऐसा लग जाता है उसको फिर याद भी नहीं रहता। तो बहुत ज़्यादा होना भी कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं है जिसकी हेरस रखें कि हम ज़्यादा होगा ही तो कोई काम करेंगे। हो सकता है ज्यादा होता तो आप काम ही ना कर सकते। तो कहते हैं कि मैं तो बड़ा मालदार था, बड़ा खुशहाल था, और आप देखेंगे यही खुशहाली उनको ले बैठी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि गजवात के मामले में मदीना से निकलने के वक्त अपने इरादे को मख्फी रखते थे। जिस सिमत में जाकर जिहाद करना होता था मदीना से, उसके खिलाफ सिमत को निकलते थे, ताकि मुनाफिकीन मुखबरी करके दूसरों को बता ना दे। और फरमाया करते थे जंग में इस तरह खदा जायज है। खदा मतलब यानी ऐसे हेयर पेयर करना, कि इधर को दिखाना और उधर को चले जाना, उधर को दिखाना और इधर को करना, ये इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है। यहां तक कि ये गजवा तबूक का वाकया पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गर्मी और तंदस्ती की हालत में इस जिहाद का कसद फरमाया, और सफर भी बड़ी दूर का था, मुकाबले पर दुश्मन की कुव्वत और तादाद भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिहाद का खुलकर ऐलान कर दिया, ताकि मुसलमान इस जिहाद के लिए पूरी तैयारी कर सके। और दूसरी बात यह भी है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गजवा है, इसके बाद आपकी वफात हो गई थी। तो इस आखिरी गजवे के अंदर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा इम्तिहान और एक बहुत बड़ी तरबियत उनकी हो गई। आपके बाद भी जो भी हालात आएंगे वो उसको फेस करने के काबिल होंगे। इस जिहाद में शरीक होने वालों की तादाद सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक 10,000 से जायद, और हाकिम की रिवायत हजरत मुआज से है कि हम इस जिहाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो हमारी तादाद 30,000 से जायद थी, और 30,000 अच्छी खासी तादाद होती है, और ज्यादा यही मौकफ राजे है, यानी ज्यादा मेजोरिटी यही कहती है कि 30,000 थे। और इस जिहाद में निकलने वालों की कोई फहरिस्त नहीं लिखी गई थी, यानी कोई लिस्ट नहीं बनाई गई थी, इसलिए जो लोग जिहाद में जाना नहीं चाहते थे उनको ये मौका मिल गया। देखिए ना, जाहिर है 30,000 की लिस्ट को कंप्यूटर के उसमें भी दौर में भी आप बनाने लगे तो आसान नहीं है, तो कहाँ वो उस वक्त बनाते कोई लिस्ट। तो उनको जो जाना नहीं चाहते थे उनको मौका मिल गया कि हम नहीं भी गए तो किसी को कौन सा खबर होगी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिहाद के लिए निकले, तो वो वक्ता की खजूरें पक रही थी, बागात वाले उन्हीं में मशहूल थे। इसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी और जुमेरात के रोज आपने इस सफर का आगाज किया। आपको पता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमेरात के दिन सफर करना पसंद था। अगर अगर चॉइस हो, अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है, तो आप भी अपना जो सफर का दिन है चॉइस हो तो जुमेरात को अपना सफर शुरू किया करें, सुन्नत पूरी हो जाएगी। मेरा हाल ये था कि मैं रोज सुबह को इरादा करता कि जिहाद की तैयारी करूं, मगर बगैर किसी तैयारी के वापस आ जाता। मैं दिल में कहता था कि मैं जिहाद पर कादिर हूं, मैंने मुझे कोई कौन सा मसला है, कोई मुझे निकलना चाहिए, मगर यूं ही मेरा रोज इरादा टलता रहा। यानी आज जाता हूँ, कल कल जाता हूँ, कल कल अच्छा कल कर लेता। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमान जिहाद के लिए रवाना हो गए। अब सारे तैयारी कर रहे हैं ना, ये कहते हैं हाँ ठीक है मैंने जाना तो है, ये नहीं कहा था कि मैंने नहीं जाना, मगर मैं जाता हूँ अच्छा करता हूँ करता हूँ, सुस्ती हो जाती है। फिर भी मेरे दिल में जब वो चले भी गए तो यही आता रहा कि मैं भी चला जाऊंगा, और जाहिर है वो काफिला तो स्लोली चलता है ना, तो मैं बस तेज रफ्तार सवारी पे बैठ के तो जाके उनसे मिल जाऊंगा। और कहते हैं काश मैं ऐसा कर लेता, मगर अफसोस कि ये नहीं हो सका। तो जब इंसान डिले करता है ना, तो होता क्या है कि अब वक्त हमेशा हाथ में नहीं रहता, वक्त इंसान के हाथ से निकल जाता है और फिर बाद में इंसान पछताता रहता है। इन्होंने पहले सोचा ना कि मैं तेज रफ्तार सवारी पे सवार होऊंगा, मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा, और वो तो स्लोली चल रहे हैं, जितना वो फासला 3 दिन में करते वो 1 दिन में जाके उनसे मिल जाते। लेकिन डिले करते करते फिर ये हाल आ गया था कि उनको समझ आ गई कि अब वो इतनी दूर चले गए होंगे कि अगर मैं भाग के किसी सवारी पे तेज पे जाऊंगा भी तब भी उनसे नहीं मिल सकूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद जब मैं मदीना में कहीं भी जाता तो ये बात मुझे गमगीन करती कि इस वक्त पूरे मदीना में यहाँ तो वो लोग नजर आ रहे हैं जो निफाक में डूबे हुए थे, यहाँ फिर ऐसे कोई बीमार है, कोई माजूर है जो सफर के काबिल ही नहीं थे। दूसरी तरफ पूरे रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा ख्याल नहीं आया, यहाँ तक कि तबूक पहुंच गए। उस वक्त आपने एक मजलिस में जिक्र किया कि काब बिन मालिक को क्या हुआ, वो कहाँ है? तो बनू सलमा के लोगों में से एक आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह उनको जिहाद से उनके उम्दा लिबास और उस पर नजर करते रहने ने रोका, यानी वो अब तो अपने आप में ही गुम है, वो तो अपने ख्यालों के अंदर है। तो हजरत मुआज बिन जबल ने अर्ज किया, तुमने ये बुरी बात कही। देखिए सहाबा का किरदार कैसा था, उसी वक्त उनको वहां पे रोका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखुदा मैंने उनमें खैर के सिवा कुछ नहीं पाया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। कहते हैं जब मुझे ये खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ वापस ला रहे हैं तो मुझे बड़ी फिक्र हुई। करीब था कि मैं अपनी गैर हाजिरी का कोई उजर घबरा के तैयार कर लेता और ऐसी बातें पेश कर देता जिसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से निकल जाता, और इसके लिए अपने अहल और दोस्तों से भी मदद ले लेता कि मतलब है कि मैं उसको भी कह दूंगा, उसको भी कह दूंगा कि हाँ मेरा तो ये प्रॉब्लम था, मैं तो इसलिए नहीं किया, और ऐसा वो मेरे दोस्त वगैरह भी हाँ में हाँ मिला देते कि हाँ भाई ये बात सही क्या है। यहाँ तक कि जब ये खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं तो जो सारे ये बातें थी, ये ख्यालात थे, मेरे दिल से मिट गए और मैंने समझ लिया कि आपकी नाराजगी से किसी ऐसी बुनियाद पर मैं नहीं निकल सकता जिसमें झूठ हो। इसलिए कि मैंने अगर झूठ बोल भी दिया तो अल्लाह ताला तो जाहिर कर देगा ना। तो कहते हैं मैंने सच बोलने का इरादा कर लिया कि मुझे सच ही निजात देगा, मैंने अब जो मर्जी हो जाए मैंने सच ही बोलना, देखेंगे फिर क्या होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, हालांकि ये बड़े एलिक्वेंट थे, मतलब अपनी बात करने में ना बहुत जैसे होता है कई लोगों को बात करने का एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, वो बात करते हैं तो उनकी बात ठोस होती है, इधर उधर की नहीं मारते, तो उनकी बात दूसरा समझ भी जाता है। तो ये ऐसे थे कि अगर ऐसी बात बोलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन कर लेते, लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है ना, तकवा देखिए इन लोगों में कितना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो चाश्त के वक्त, यानी सुबह को सूरज निकलना जब बुलंद होता है उसके कुछ वक्त के बाद मदीना में दाखिल हुए, और आदत मुबारक यही थी कि सफर से वापसी का अमूमन यही वक्त हुआ करता था। और आके जब सफर से वापस आते तो मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे, 2 रकत नमाज पढ़ते थे, फिर हजरत फातिमा के घर जाते थे, फिर बाकी अजवाज के घर जाते थे, पहले नहीं जाते थे, सबसे पहले मस्जिद जाते। इसी आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए, 2 रकत अदा की, फिर मस्जिद में बैठ गए। जब लोगों ने ये देखा तो गजवा तबूक में ना जाने वाले जो मुनाफिकीन थे जिनकी तादाद 80 से कुछ ऊपर थी, तो वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए और झूठे बहाने शुरू कर दिए, झूठी कस्में खाने शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो जाहिरी उनकी बातें थी, उनके अखवाल थे, करार थे, उनको कबूल कर लिया और उनके लिए दुआए मगफरत फरमाई और उनके जो दिल के हालात हैं उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। आप तो दिल के हालात नहीं जान सकते। इसी हाल में कहते हैं मैं भी हाजिर हो गया और चलते चलते सामने जाकर बैठ गया। जब मैंने सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुस्कुरा के देखा जैसे नाराज आदमी कभी कभी करता है। कभी कभी आप नाराज होते हैं ना किसी से, फिर भी आप एक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हैं, वो वाली मुस्कुराहट थी। तो बाद रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख फेर लिया। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप मुझसे चेहरा मुबारक क्यों फेरते हैं? खुदा की कसम मेरे अंदर निफाक नहीं है, ना दीन के मामले में किसी शक व शुभा में मुबतला हूँ, ना मेरी अंदर कोई चेंज आया। तो आपने फरमाया फिर जिहाद में क्यों नहीं गए? क्या तुमने सवारी नहीं खरीद ली थी? मैंने अर्ज किया बेशक या रसूल्ला, अगर मैं आपके सिवा दुनिया के किसी दूसरे आदमी के सामने बैठता तो मुझे यकीन है कि मैं कोई बहाना घड़ के और उसकी नाराजगी से बच जाता, क्योंकि मुझे यानी बहसो मुबाहसा और बात बनाने में महारत हासिल है, बड़े स्किल्ड थे ये। लेकिन कसम अल्लाह की मैंने ये समझ लिया कि अगर मैंने आपसे कोई झूठी बात की जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ती तौर पे राजी हो भी जाएं, तो कुछ बईद नहीं कि अल्लाह ताला हकीकत हाल आप पे खोल के मुझसे नाराज करा दे। और अगर मैंने सच्ची बात बता दी जिससे आप अभी तो मुझसे नाराज हो जाएंगे मगर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, और सही बात यह है कि जिहाद से गायब रहने में मेरे पास कोई उजर नहीं था, कितनी सच्ची बात की। मैं किसी वक्त भी माली और जिस्मानी तौर पे इतना कवी और पैसे वाला नहीं था जितना इस वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शख्स ने तो सच बोला, फिर फरमाया छज जाओ यहां तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे मुतल्लिक कोई फैसला फरमा दे। मैं यहां से उठकर चला तो बनू सलमा के जो इनका कबीला था उसके चंद आदमी मेरे पीछे लगे और कहने लगे इससे पहले तो हमारे इल्म में तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो ये तुमने क्या बेवकूफी की? देखिए लोग भी ना उकसाने वाले बड़े होते हैं, जैसे अगर आज आपको कहीं सच बोल दे और आपको जरा सा भी कुछ मसला हो जाए तो वो कहेंगे तुम्हें क्या सच बोलने की जरूरत है, तुम बहुत सच्ची बन गई, तुम भी कह देती कोई बात, तो भुगतो अब अपना सच। और इतना उसको बुरा भला कहेंगे, इतना उसको यानी बेइज्जत करेंगे। तो उन्होंने भी उनको पकड़ लिया, उन्होंने कहा तुमने ये क्या बेवकूफी की, को तुम बहाना नहीं बना सकते जैसे दूसरों ने किया, वो भी तो पीछे रहे थे, तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफार कर देते जैसे उनके लिए की थी तो तुम्हारे लिए काफी हो जाती। तो कहते हैं ये मुझे खुदा की कसम इन्होंने मुझे इतना मलामत किया, इतना मलामत किया कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं पता नहीं वापस चला ही जाता हूँ, जाके कोई बात कह देता हूँ कि मैंने जो पहले बात की थी वो गलत थी और ये मेरी बात अब मैं सही बात कह रहा हूँ, इतना यानी उनको जिच कर दिया। मगर फिर मैंने दिल में कहा मैंने एक गुनाह तो कर ही दिया, अब दो गुनाह बना लो। अल्लाह हू अकबर। देखिए ना इंसान कभी सोचता नहीं है, पहले वो एक गलती करता है फिर अपने झूठ से उसको कवर करके ना तो एक और गुनाह अपने सर ले लेता है। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि पीछे रह जाने वाले में कोई और भी है जिसका मेरे जैसा मामला है, जिसने मेरे जैसे जुर्म किया और उसने इतराफ किया हो? इन लोगों ने कहा कि हाँ 2 आदमी और हैं जिन्होंने तुम्हारी तरह इकरारे जुर्म कर लिया और उनको भी वही जवाब दिया गया जो तुम्हें दिया गया। मैंने पूछा वो 2 कौन है? उन्होंने बताया कि मुरारा बिन रबी है और हिलाल बिन उमैया। इब्ने अबी हातिम की रिवायत में कि उनमें से जो मुरारा थे उनका तो ये सबब हुआ कि उनका एक बाग था जिसका फल उस वक्त पक रहा था, तो उन्होंने अपने दिल में कहा कि तुमने इससे पहले बहुत से गजबात में हिस्सा ले लिया, अगर इस साल ना भी जाओ तो क्या इतना फर्क पड़ता है? हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये फर्ज ऐन इसको कहा था, यानी फर्ज ऐन क्या होता है, यानी वो फरीजा जिसमें हर एक को शामिल होना जरूरी, ऐसे नहीं है कि कोई चलो कोई और कर लेगा तो आपके लिए काफी हो जाए। मसलन जैसे नमाज है, कोई और नहीं आपकी जगह पढ़ सकता ना, आपने ही पढ़नी। तो ये था कि इसमें हर एक ने जाना है। इसके बाद जब उन्हें अपने गुनाह पे शर्मिंदगी हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला से अहद कर लिया कि ये मैं बाग जो है ना ये बस सदका कर दूंगा। और दूसरे जो थे हिलाल बिन उमैया, उनका वाकया ये कि उनके अहलो अयाल अरसे से मुतफरक थे, यानी कई कई जगह पे थे। जैसे होता ना कि फैमिली मेंबर्स कोई कोई कहीं हो, कोई कहीं हो, फिर एक मौका ऐसा आता है कि फैमिली गेट टुगेदर होती है, सारे दूर नजदीक से, अक्सर शादियों पे हमारे यहाँ होता है जैसे दूर नजदीक से जमा हो जाते हैं, तो उस मौके पे तो सब जमा हो गए। तो ये ख्याल किया कि इस साल में जिहाद पे चलो नहीं जाता, अपनी फैमिली के साथ अपने खानदान के साथ मैं टाइम स्पेंड कर लूँ। और उनको भी जब अपने गुनाह का ख्याल आया तो उन्होंने ऐद किया कि मैं अब अपने अहलो आया से अलहदगी इख्तियार कर लूंगा। तो काबिल मालिक फरमाते हैं कि इन लोगों ने जब उनका नाम लिया, वो तो बदर के मुजाहिदीन में से हैं, तो मैंने कहा कि बस मेरे लिए इन्हीं दोनों बुजुर्गों का अमल काबिले तकलीद है। ये कह के मैं घर चला गया। क्या समझ आई इसे बात? ये बात समझ आई कि देखें बाज दफा इंसान अकेला होता है ना तो खुद ढीला पड़ने शुरू हो जाता है, लेकिन जब उसको सपोर्ट मिलती है ना, उसके साथ दो और उसकी जैसी बात करने वाले मिल जाते हैं, तो वो फर्म हो जाता है, फिर मजबूत हो जाता है, उसको कुव्वत आ जाती है। कहते हैं ना एक और एक दो नहीं 11 हो जाते हैं, तो वाकई हो जाते हैं। एक बंदा खड़ा होके कोई हक की बात करता है, अब आगे से कोई भी नहीं जवाब देता, सारे खामोश है, तो वो हो सकता है हिम्मत हार दे, लेकिन अगर दूसरा खड़ा हो गया, एक और तीसरा भी खड़ा हो गया, तो उसको कुव्वत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। इसीलिए हक का साथ देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको क्या पता आपकी एक बात बोलने की वजह से हमारे से क्या होता है, हम क्या फायदा मेरा कहने का, कुछ हो थोड़ी जाना है। नहीं, हो सकता है आप हक में उसका साथ दें तो वो और मजबूत हो जाए, आपने उसके बाजू मजबूत कर दिए, वो खड़ा रहे, उसको जमने में आपने मदद दी, वरना हो सकता है वो भी गिर जाए। दूसरे ये कि इंसान को, हर इंसान को सपोर्ट चाहिए होती है। एक तरफ आप बाहर बैठ के देखें तो आपको सपोर्ट करना है ऐसे इंसान को, दूसरी तरफ आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखें जो इंसान हक के लिए खड़ा हुआ है। तो याद रखें, आप अपने जैसे लोगों में जब रहते हैं ना तो आपको सपोर्ट मिलती है, आपके इर्द गिर्द अगर जमात होती है तो आपको सपोर्ट मिलती है। अकेले चलना बाज दफा बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंसान जल्दी फिसल जाता है, गिर जाता है, लेकिन जब जमात साथ होती है ना तो आप फिसलने लगेंगे, आप ढीले पड़ने लगेंगे, आप सुस्त पड़ने लगेंगे, कोई कहेगा नहीं नहीं आप आए, आप क्लास में इतने दिन से क्यों नहीं आए, हम तो आपको याद कर रहे थे। तो अब आपको एक वही आपके साथी हैं, आपके करीब वाले हैं जो आपको हौसला देते हैं, जो आपको खड़ा करते हैं, जो आपकी जो सुस्ती आई या फिर जो भी गफलत हो गई या भूल गए तो आपको याद करा देते हैं। तो ऐसे साथी एक नेमत होते हैं, इसीलिए इंसान को ऐसे साथी अपने इर्द गिर्द रखने चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों में रहना चाहिए। अगर कोई सोचता है कि मैं अकेला ही चलता रहूंगा, अकेले में क्या है, नहीं, हर इंसान को सपोर्ट चाहिए होती। सही, तो इनको भी देखें, उनसे हौसला हासिल हुआ, तो अपने आप को जोड़ के रखें, कोशिश करें कि आप अकेले नहीं चले, आपके साथी आपके साथ हों। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हम तीनों के साथ सलाम कलाम करने से मना कर दिया कि बिल्कुल बायकॉट इनका। इस वक्त हम तो सब मुसलमानों से बदस्तूर मोहब्बत करते थे, मगर उन सब का रुख हमसे फिर गया, यानी सब ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया। जरा भी कोई, यानी छुप के भी एक इंसान कर सकता ना बात, आप कौन सा हर जगह आके देख रहे थे। लेकिन मैं कहती हूँ तकवा की आला मिसाल आपने देखनी है तो सहाबा से सीखे, कि उनको ये नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देख रहे इस वक्त तो हम जाके बात कर रहे हैं, अल्लाह तो देख रहा है। इस चीज की हमें कमी होती है ना जब जिंदगी में, तभी हम ये बेईमानियां करते हैं, चोर बाजारियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें होता है फलां तो नहीं ना देख रहा, फलां तो नहीं, छुप छुप के काम करते हैं, अकेले में बुराइयां करते हैं, हम मजलिसों में हम लोगों के सामने बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अकेले में बुरे हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने वहां पे जो किया वो भी अल्लाह के लिए नहीं किया, वो भी लोगों को दिखाने के लिए किया। घर में भी जो आए तो अब लोग नहीं है तो फिर हम वैसे ही हो गए जैसे कि हम बुराई में थे, क्योंकि कहीं पे भी हमें अल्लाह की नजरों का एहसास नहीं, ना मजलिस में ना अकेले में। मजलिस में भी लोगों का खौफ और यहाँ पे बेखौफी भी इसलिए कि लोग नहीं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। हजरत इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह की रिवायत में है कि अब हमारा हाल ये हो गया कि हम लोगों के पास जाते तो कोई हमसे कलाम ना करता, इवन सलाम भी नहीं करते थे, और सलाम ये करते थे तो वो जवाब भी नहीं देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया तो बस। उस वक्त हमारी दुनिया बिल्कुल बदल गई, ऐसा मालूम होने लगा कि ना वो लोग हैं जो पहले थे, ना हमारे बाग, ना मकान वो हैं जो पहले थे। इसी चीज को यहाँ पे कहा गया ना कि जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद तंग हो गई इन पे। जाहिर है आप इस पेंडेमिक में देख लें, जब कोविड स्टार्ट हुआ था और हर चीज बंद हो गई थी तो ऐसे लगता जमीन तंग हो गई है। अरे वही घर बार तो सब वही थे, लेकिन हम कैसे आइसोलेट हो गए थे। हालांकि अपनी फैमिलीज के साथ तो सभी रह रहे थे, लेकिन एक चीज आपने महसूस की है कैसे लगने लगा कि जमीन अपनी कुशादगी बावजूद तंग हो गई। तो कहते हैं हमारे वही बाग थे जो पहले थे, सब चीज थे, मगर सब अजनबी लगने लगा। कहते हैं मुझे सबसे बड़ी ये फिक्र थी कि अगर मैं इस हाल में मर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरा जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे, या खुदा ना खास्ता इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वफात हो गई तो मैं तो सारी जिंदगी लोगों में जलीलो ख्वार फिरता रहूंगा। तो इसकी वजह से कहते हैं मेरे लिए सारी जमीन वीरान नजर आने लगी, बेगानी नजर आने लगी, और ये एक दो दिन की बात नहीं थी। इसी हाल में हम पर 50 रातें गुजर गई, यानी 1.5 महीने से भी ऊपर। इस जमाने में मेरे दोनों साथी मुरार और हिलाल तो शिकस्ता दिल होके घर में ही बैठ गए, उन्होंने तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया। वो तो रात दिन रोते थे, लेकिन मैं जवान आदमी था, बाहर निकलता था, चलता फिरता था, नमाज में मुसलमानों के साथ शरीक होता था, बाजारों में फिरता था, मगर मैं इससे कोई बात नहीं करता था। और ये भी बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि कोई बात ना करे। अब छोटी ये उस तरह से तो नहीं सिमिलर, लेकिन एक जस्ट एक ग्लिम्प्स मैं आपको देना चाहती हूँ। ये पेंडेमिक में जैसे लोग एक दूसरे को, इंसान इंसान को देख के भागता था, इंसान इंसानों से खौफ ज्यादा था, तो कैसा लगता था हमें। तो कहते हैं ना मेरे सलाम का जवाब देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, नमाज के बाद हाजिर होता और सलाम करता तो आपको देखा करता था कि क्या मतलब इनका रिएक्शन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता कि उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया है कि नहीं। तो फिर मैं आपके करीब ही नमाज पढ़ता तो नजरें चुरा के आपकी तरफ देखा देखता था, तो मालूम होता था कि जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो आप मेरी तरफ देखते हैं, मुझे ऐसे था, और जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ देखते हैं। जब लोगों की ये बेवफाई लंबी हो गई तो एक रोज मैं अपने चचाजाद भाई के कतादा के पास गया, जो मेरे सबसे ज्यादा दोस्त थे, यानी एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, कजन भी थे। तो मैं उनके बाग में दीवार फलाम के अंदर दाखिल हुआ और उनको सलाम किया। खुदा की कसम उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, ए कतादा क्या तुम नहीं जानते कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता। अभी ये देखिए कैसी सजा थी एक उनके लिए। इस पर भी कतादा ने सकूत किया, कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने बार बार ये सवाल दोहराया तो तीसरी या चौथी मरतबा में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जानता है और उसका रसूल। कहती मैं रो पड़ा और इसी तरह दीवार पलांग के बाग से बाहर आ गया। इसी जमाने में एक दिन कहते हैं एक दिन मदीना के बाजार में चल रहा था कि अचानक शाम का एक बंदा था जो गल्ला फरोख्त करने के लिए मदीना आया करता था, उसको देखा कि लोगों से पूछ रहा है क्या तुम्हें काब बिन मालिक का पता है। तो लोगों ने मुझे देखकर मेरी तरफ इशारा कर दिया। वो आदमी मेरे पास आया और मुझे शाहे गसान का, गसान के बादशाह का एक खत दिया, एक रेशमी रुमाल में वो था और जिसमें लिखा क्या था कि मुझे ये खबर मिली है कि आपके नबी ने आपसे बेवफाई की है और आपको दूर कर दिया, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जल्लत और हलाकत की जगह में नहीं रखा, तुम अगर हमारे पास आना पसंद करो तो आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह अकबर, यानी कि ऐसी कैसी आजमाइश, कितनी बड़ी आजमाइश कि यहां से तो मुझे तो धिक्कार मिल रही है, यहाँ पे तो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा, तो क्यों ना उधर ही चला जाऊं, मैं वहां पे चाहता हूँ, वहां पे देखो बादशाह ने खुद बुलाया है, बादशाह ने, कोई आम आदमी ने नहीं। यहाँ पे हम कितनी जल्दी बदजन हो जाते हैं कभी मुसलमानों के रवैयों से, छोड़ो छोड़ो ये सारे मुसलमानों को छोड़ के दूसरों में जाके बैठने लगते हैं, दूसरों को अपना करीब कर लेते हैं कि देख लिया है बड़े मुसलमान ऐसे हैं, हो जाते हैं ना बदजन। ये देखिए कैसे लोग थे, अल्लाह ने इनको आखिरी हद तक आजमाया है कि सबकी तरफ से बेरुखी, सबकी तरफ से। तो अब वो कह सकते थे मेरा यहाँ क्या रह गया, मैं तो तंग आ गया हूं इस चीज से, ऐसा मेरा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया, ऐसी मैंने क्या वो कर दी, और भी तो लोग थे जो नहीं गए। हमारे पास कितनी जस्टिफिकेशन होती है ना, हम मान के नहीं देते अपनी गलती को, अगर मान भी ले ना तो साथ ये जरूर कह देते मगर इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं इतनी भी क्या बड़ी बात हो, ये कोई मानना नहीं होता, ये इतराफ नहीं है, इतराफ तो ये है कि हाँ अल्लाह मुझसे गलती हुई है और ये नहीं होना चाहिए, मैं क्यों ऐसा किया, ये नहीं कि और भी तो लोग करते हैं, अगर मैंने कर लिया, अब मान तो लिया कि मैंने कर दिया है ये गलती, अगर मैंने कर दी तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई। और फिर अगर कोई फिर भी ना माने तो हम कहते हैं छोड़ो जाने दो इसको, इतने भी नहीं हमें, इतने भिख मंगे नहीं हम, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है, मैं भी कोई चीज हूं, चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपने किसी किसी से माफी मांगनी हो वो नहीं मान रहा, या इवन अपने माँ बाप को कह देते हैं फिर नहीं आप नहीं मानते तो जाएं, फिर मैं भी कोई माफी रोज रोज नहीं मांगने आ रही, बस खत्म। तो देखिए उनकी क्या थी कि जब उन्होंने ये खत पढ़ा ना, कहते हैं मैंने जब ये खत पढ़ा तो कहा ये एक और एक इम्तिहान और आजमाइश आ गई कि अहले कुफर को भी मुझसे उम्मीद हो गई, वो भी तमा करने लगे, उनको भी तवक्को हो गई कि मैं उनके साथ मिल जाऊंगा, यानी मेरी ये हालत हो गई है कि वो भी सोच रहे हैं, इंसान सोचता है ना कि मैं इतना गिर पड़ गया हूं। तो मैं ये खत लेके आगे बढ़ा और एक दुकान पर तंदूर लगा था उसमें झोंक दिया, मैं जला दिया उन्होंने उस खत को। हजरत काफ फरमाते हैं कि जब 50 में से 40 रातें गुजर चुकी तो अचानक देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद खुजैमा बिन साबित मेरे पास आ रहा है, आके ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि आप अपनी बीवी से भी अलहदा हो जाए। मैंने पूछा क्या तलाक दे दूं या क्या करूं, उन्होंने कहा कि नहीं अमलन उनसे अलग हो जाए, उनके करीब ना जाए। इसी तरह का हुक्म मेरे दोनों साथियों के पास भी पहुंचा, मैंने बीवी से कह दिया तुम अपने मेके में चली जाओ और वहीं जाके रहो जब तक अल्लाह ताला कोई फैसला ना करे। अब उनको नहीं पता कि कब फैसला आएगा, महीने से भी ऊपर टाइम हो गया, 2 दिन नहीं यहाँ पे गुजरते, हम जब तक सोशलाइज ना करें, लोगों से मिले नहीं, हम परेशान हो जाते हैं, होम सिक होने लगते हैं। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि जाओ तुम अपने मेके चली जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा मेरी बीवी के साथ तो मैं रहता हूँ और मेरे ये काम करती है और ये कितनी चीजें हो सकती थी, लेकिन समय ना माता ना उनकी देखे, हिलाल बिन उमैया की जो बीवी थी खौला बिनते आसिम, ये हुक्म सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज किया या रसूलल्लाह हिलाल जो है वो एक बूढ़े आदमी है और कोई उनके पास नौकर चाकर नहीं है, तो मतलब नजर भी उनको सही नहीं आता, क्या आप ये पसंद नहीं फरमाएंगे कि मैं इनकी खिदमत करती रहूँ, फरमाया कि खिदमत करने की ममानियत नहीं, अलबत्ता वो तुम्हारे पास ना जाए यानी कोई ताल्लुक ना रखे। उन्होंने अर्ज किया वो तो बुढ़ापे की वजह से ऐसे हो गए कि इनमें कोई हरकत ही नहीं है, और वल्लाही अब तो मुसलसल ही उनपे गिरियात आ रही, रात दिन रोते रहते हैं। ये होती है एक तौबा, नहीं खूबसूरत तौबा, तौबा तो हम भी करते हैं लेकिन हमारी तौबा बहुत सूखी रूखी होती है, खुश्क बिल्कुल, जिसमें ना कोई आंसू, ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई बेचैनी, बस ठीक है तौबा कर तो ली है, और साथ साथ ये एहसास भी कि हम इतने ज्यादा कोई बुरे नहीं है, ज्यादा कोई बुरे हमने काम नहीं किए हैं, लोग बहुत कुछ बुरा करते हैं, तो साथ अपनी नेकी का भी एहसास है। मगर चलो मैं तौबा कर ही लेती हूँ, मैंने इतना कोई ऐसे गुनाह तो कुछ नहीं किए। अल्लाह अकबर। काब बिन मालिक फरमाते हैं, मुझे भी मेरे बाज मुतालिकी ने मशवरा दिया कि तुम भी जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दो कि जाके वो इजाजत दे दे तुम्हारी बीवी को भी साथ रखने की, जैसे कि आपने उनको दी है हिलाल को। तो मैंने कहा मैं नहीं ऐसा करूंगा। पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दें। इसके अलावा मैं जवान आदमी हूँ, बीवी के साथ रहना एहतियात के खिलाफ है। चुनाचे इसी हाल में मैंने 10 रातें और गुजार दी, यहाँ तक कि 50 रातें मुकम्मल हो गई। तो कहते उस वक्त हमारी तौबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तहाई रात गुजरने के वक्त नाजिल हुई, यानी 50 रातें गुजरने के बाद। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा जो उस वक्त हाजिर थी, उन्होंने अर्ज किया कि इजाजत हो तो काब बिन मालिक को इसी वक्त इसकी खबर कर दी जाए। आपने फरमाया ऐसा हुआ तो अभी लोगों का हजूम हो जाएगा, रात की नींद मुश्किल हो जाएगी। काब बिन मालिक फरमाते हैं कि 50वीं रात के बाद जो सुबह हुई ना, तो सुबह की नमाज पढ़कर मैं अपने घर की छत पे बैठा था, और हालत वो थी जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया कि मुझ पे मेरी जान भी और जमीन भी बावजूद वसत के तंग हो चुकी थी। अचानक मैंने सला पहाड़ के ऊपर से किसी चिल्लाने वाले की आवाज सुनी, बुलंद आवाज से कह रहा था ए काब बिन मालिक बशारत हो। तो ये बुलंद आवाज से कहने वाले अबू बकर थे, जिन्होंने जबले सला पर चढ़कर ये आवाज दी कि अल्लाह ने काब की तौबा कबूल फरमा ली है, बशारत हो। और कहते हैं कि ये खुशखबरी हजरत काब को सुनाने के लिए दो आदमी दौड़े थे, उनमें से एक आगे बढ़ गया, तो जो पीछे रह गया उसने ये किया कि सला पहाड़ पर चढ़कर आवाज दे। और कहा जाता है कि ये शायद अबू बकर सिद्दीक थे और हजरत उमर थे। तो काब बिन मालिक फरमाते हैं ये आवाज सुनकर मैं सजदे में गिर गया। अच्छा, ये भी एक हमारी इस्लाम में एक ये चीज है कि जिस वक्त आपको कोई खुशी की खबर मिले, कोई ऐसी चीज आपको जो खुश कर देने वाली, वो कामयाबी है, वो दुनिया की कोई भी आपको ऐसी नेमत का मिलने का या किसी खुशी का मिलने का या कोई भी ऐसी बात आपको होती है, तो आप फौरन सजदे में गिर जाए। इसके लिए आपको वुजू भी करने की जरूरत नहीं, आप जहां है ना सजदे में चले जाए। ये सजदा जो है ना, ये शुक्र का सजदा है। देखिए इनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी थी कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। तो जिसकी अल्लाह तौबा कबूल कर ले, फिर उसकी क्या कहने, उसके तो नसीब खुल गए। तो वो कहते हैं मैं इंतहाई खुशी से रोने लगा। देखिए रोना एक खुशी से भी होता है, जैसे वो कहते हैं ना कि इन्ना हु आधा का वा अब का, अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया। तो खास मुफस्सिरी ने उसकी ये भी तफसीर की है कि अल्लाह हंसाता है और रुलाता है कि कयामत के दिन जब वो जन्नत में, यानी जन्नत का उनका परवाना मिल जाएगा जन्नतियों को, तो उनकी खुशी का ये आलम होगा कि खुशी से रो पड़ेंगे। तो वो खुश भी हैं और रो भी पड़े। वो खुशी का भी एक रोना होता है कि इंसान इतना खुश हो जाए कि उसके आंसू बह पड़े। तो मुझे मालूम हो गया कि अब कुशादगी आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद सहाबा कराम को हमारी तौबा कबूल होने की खबर दी। अब सब तरफ से लोग हम तीनों को मुबारकबाद देने के लिए दौड़ पड़े। देखिए सहाबा के अंदर भी कितना खलूस था, ये नहीं कोई कोई जल भुन के बैठ जाए, कोई ये करे कि इतनी भी क्या जरूरत थी, कुरान की आयतें क्यों आ गई इनके बारे में, कुछ ऐसी बात नहीं। एक दूसरे की कोई इल फीलिंग्स नहीं थी। जब हुक्म हुआ तो उन्हीं से ऐसे हो गए जैसे अजनबी है। इसका मतलब अपना कुछ नहीं, सब वही जो समेना वो अतान, जैसे अल्लाह का हुक्म हुआ नहीं बात करनी, नहीं बात की, अब बात कर लो करने लग पड़े। तो ऐसे नहीं था कि उनकी पर्सनल कोई किसी के साथ कोई ग्रजेस या पर्सनल किसी के साथ कोई मोहब्बत, वो गालिब आ गई हो अल्लाह के हुक्म पे। यानी मुझे, मेरे तो ये बेस्ट फ्रेंड है, अब तो कोई देख भी नहीं रहा, छुपके ही बात कर लेता हूँ, थोड़ी बात कर लेता हूँ, अब तो इतने दिन हो गए, उदास हो गया दिल। और आप भी कोई ये नहीं मुंह बना के बैठ गया कि छोड़ो, नहीं, सारे मुबारकबाद देने के लिए भाग रहे हैं। बाज लोग घोड़े पे सवार होकर मेरे पास पहुंचे, मगर पहाड़ से आवाज देने वाले की आवाज सबसे पहले मुझे पहुंच गई थी। काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए निकला तो लोग जौक दर जौक मुझे मुबारकबादें देने के लिए आ रहे थे। काब फरमाते हैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, आपके इर्द गिर्द सहाबा कराम का मजमा लगा। मुझे देख के सबसे पहले तलहा बिन उबैदुल्लाह खड़े होकर मेरी तरफ लग गए, मुझसे मुसाफा करके तौबा की कबूलियत पे मुबारकबाद दी। कहते हैं तलहा का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलता। देखिए ना, ये बात होती है कि कोई आपकी खुशी में खुश हो जाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ज्यादा टाइम लोग मुबारकबाद देते हैं लेकिन अंदर से जले भुने होते हैं, इसको क्यों ये कामयाबी मिल गई, इसको क्यों ये चीज मिल गई। लेकिन इंसान को वाकई याद रखना चाहिए कि कौन है जो उसकी खुशी में मुखलिस होके शरीक हुआ। आपने अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आपका चेहरा मुबारक खुशी की वजह से चमक रहा था। आपने फरमाया, काब खुशखबरी हो, तुम्हें ऐसे मुबारक दिन की जो तुम्हारी उम्र में पैदाइश से लेकर आज तक सबसे बेहतरीन दिन है। अल्लाह हु अकबर, यानी अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए, वाकई इससे ज्यादा क्या अच्छा दिन हो सकता है। ये तो कहते मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ये हुक्म आपकी तरफ से या अल्लाह की तरफ से। यानी फिक्र ये थी कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया या आप खुद बता रहे हैं। आपने फरमाया, नहीं, ये हुक्म अल्लाह का है, तुमने सच बोला था, अल्लाह ने तुम्हारी सच्चाई को जाहिर कर दिया। जब मैं आपके सामने बैठा तो अर्ज किया, या रसूल, मेरी तौबा ये है कि मैं अपने सब माल और मता से निकल जाऊं। अब इसके बाद यानी उनको इतना हुआ ना कि इस माल की वजह से मैं रुक गया, मैं सारा अल्लाह के रास्ते में सदका कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया, नहीं, कुछ माल अपनी जरूरत के लिए रहने दो, यही बेहतर। तो मैंने अर्ज किया, अच्छा आधा माल सदका कर दूं। आपने इससे भी इनकार फरमाया। मैंने कहा, फिर एक तहाई माल की इजाजत दे दी, तो आपने वो कबूल कर लिया। मैंने अर्ज किया, या रसूल, मुझे अल्लाह ने सच बोलने की वजह से निजात दी है, तो इसलिए मैं वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं कभी सच के सिवा कोई कलमा नहीं बोलूंगा। फिर फरमाया, जब से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सच बोलने का अहद किया था, कहते आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरी जुबान ने कभी कोई कलमा झूठ का नहीं कहा, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बाकी जिंदगी भी मुझे इससे महफूज रखेंगे। काब फरमाते हैं कि खुदा की कसम, इस्लाम के बाद इससे बड़ी नेमत मुझे नहीं मिली कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच बोला, झूठ नहीं बोला। क्योंकि अगर मैं झूठ बोलता तो इसी तरह हलाकत में पड़ जाता जैसे दूसरे झूठी कस्में खाने वाले हलाक हुए, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने यह आयात नाजिल की कि बाद में कि उन्होंने झूठी कस्में, हम पढ़ चुके हैं ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 50 दिन के लिए ही ग़ज़वा तबूक के लिए निकले थे, इनके भी 50 दिन ही पूरे हुए और फिर इनकी तौबा कबूल हुई। तो इसमें बहुत सारे सबक है हमारे लिए, बहुत सारे सबक है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी ना कि ग़ज़वात में कि जिस तरफ जाना होता उसकी मुखालफत में जाया करते थे, ताकि मुखालफीन को ये ना पता चले कि आप किस तरफ जा रहे हैं, किस कबीले से जिहाद कर रहे हैं या क्या। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि आप किसी को धोखा देना सही है, नहीं, बल्कि मुराद इस से ये है कि अपना अमल ऐसा करें जिससे मुखालिफीन खुद ही एक उसमें धोखे में पड़ जाएं, जैसे जिहाद के लिए मुखालिफ सिमत में चले गए, तो बोला कुछ नहीं लेकिन उनको एक जाहिर किया ऐसा। फिर देखें, जो मैंने आपको बताया कि थर्सडे का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है सफर के लिए, तो आप भी इसकी कोशिश करें। फिर ये एक और बात है कि किसी बुजुर्ग को या किसी उस्ताद को या किसी को भी झूठ बोल के राजी करने की जरूरत है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो इस वाक्य से हमें ये भी पता चलता है कि सहाबा कराम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी इंतहाई मोहब्बत थी कि उनकी नाराजगी, उनके सलाम कलाम बंद कर देना तो उनको कितना अपने पर भारी महसूस होता था। फिर आप ये देखें कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे कतादा, उन्होंने भी सलाम का जवाब नहीं दिया, और ये नहीं कि वो उनके दुश्मन हो गए थे बल्कि सिर्फ इताते रसूल। तो इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमा दे उस पे वो कैसे चलते थे, कितने सख्ती से अमल करते थे। यही उनकी मोहब्बत की भी निशानी है। और ये भी कि देखे, जिस वक्त इंसान अपने ईमान वाले साथियों से कभी भी किसी बात की वजह से भी उसके दिल खराब हो जाए, बदजन हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ के कहीं और चल पड़े। अब उनको एक बड़े बादशाह ने लालच दिया था, इसके बावजूद ये हिले नहीं। तो इसी तरह किसी गुनाह से तौबा के वक्त माल का सदका करना, ये भी एक रिवायत हमें पता चलती है। और इनको जब जिन्होंने खुशखबरी थी, जब ये भी रिवायात में आता है, जब वो इनके पास आए तो इन्होंने उनको जो कपड़े पहने हुए थे ना, वो उनको सदका के तौर पे दे दिए। वो जो भी शख्स था तो उसको सदका के तौर पे दे दिए। यानी इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में, हम और भी रिवायात मिलती हैं कि उस जमाने में ऐसी भी एक, यानी एक तरीका था अरबों के अंदर कि खुशखबरी मिलने के ऊपर वो सदका किया करते थे। और ये भी बड़ा प्यारा तरीका है, और हमें उम्मुल मोमिनीन का भी ये तरीका पता चलता है कि उन्होंने भी ऐसे किया था। तो अगर हमें कोई खुशखबरी सुनाए, तो अगर हम उसको कोई चीज अपनी तरफ से देते हैं, तो ये भी एक अच्छी यानी बात है, और ऐसी चीज को करने में भी कोई हरज नहीं है, यानी खुशी के वक्त। और जैसे मैंने आपको बताया कि खुशी के वक्त सदका करना भी एक अच्छी बात है, कि इंसान अपना हाथ उस वक्त खोले और सज्दा शुक्र भी अदा करें। अच्छा, एक और बात हमें जो यहाँ पे बहुत अहम बात पता चलती है, वो ये भी है कि देखें, बाज दफा ऐसी ऐसे फराइज या ऐसी चीजें होती हैं हमारे सामने जिनमें अगर इंसान कोताही करे, अगर इंसान उनमें सुस्ती करे, तो बड़े गुनाह में पड़ सकता है। उस वक्त सुस्ती और कोताही करना इंसान को कहाँ तक पहुंचा देता है, वो ये आप देख चुके हैं इसके अंदर कि किस तरह सहाबा, सहाबी रसूल है, और ये नहीं है कि कोई मामूली बात है, यानी पहले बैते उकबा में ये शामिल हो चुके और इतने गजवात में शामिल हो चुके थे। लेकिन देखिए, एक सुस्ती हुई ना, तो सुस्ती को मामूली बात ना समझे। बस दफा इंसान की सुस्ती इंसान को एक मुश्किल में डाल सकती है, एक बड़े गुनाह का सबब बन सकती है। और ये भी हमें पता चलता है कि टाल मटोल, इंसान कहता ना कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अच्छा तरसों कर लूंगा, तो क्या हो गया, अभी कर ही लूंगी, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अक्सर औकात मौका हाथ से चला जाता है, बाद में इंसान कितनी भी कोशिश करे वो मौका हाथ नहीं आता। इसी वजह से जब नेकी का मौका मिले तो उसको हाथ से ना जाने दें, नेकी के मौके को अवेल करें। नेकी के मौके रोज नहीं आते, और जैसे बाद में वो इतना पछताए कि काश मैं निकल जाता, काश मैं उस वक्त ही निकल जाता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उस वक्त ही मैं चला जाता। लेकिन देखे ना, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। तो बहुत सारे हमें सबक मिलते हैं। इसी तरह इन इन लोगों की नीयतों में भी कोई खराबी ऐसी नहीं थी, इनके कोई ये नहीं थे कि मुनाफिक थे, ये नहीं थे कि उनकी नीयतें कोई खालिस नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से एक यानी इस चीज को एक गुनाह कंसिडर हुआ ये उनकी उसमें। और ये भी हमें समझना चाहिए कि हम ये ना सोचें नहीं 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 हमारे तो दिल बड़े अच्छे हैं, और क्या हो गया अगर हम से ये छोटा सा काम हो गया, छोटी सी यही गलती हुई है ना, तो क्या हो गया, वैसे तो मेरी नीयतें बड़ी अच्छी हैं, वैसे तो मेरे काम आगे पीछे इतने अच्छे हैं। नहीं, उसी बात को भी ये ना सोचेंगे कोई बात नहीं अगर ये भी हो गया, तो वैसे तो मैं नेक हूं ना, अगर आज मेरी एक नमाज कजा हो गई तो ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, इंसान हमेशा अपनी हर गलती के ऊपर इंतहाई अफसोस, इंतहाई दुख और इंतहाई अल्लाह ताला के सामने आजी के साथ पड़ जाए, आजी करे अल्लाह के सामने, और कभी इस घुमंड में ना आए कि मैंने तो वैसे आगे पीछे इतने कारनामे किए, मैं तो क्या हो गया अगर अभी मेरे से हुआ। ठीक है,
तो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं ये आयात, और ये भी कि ये दोनों आयतों से हमें पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में जब हम निकलते हैं और फिर हम अल्लाह ताला के रास्ते में जो भी परेशानी या जो भी वो आती है, जहाँ पे तो साथ और उसरा था, तो उसके अंदर भी घबराए नहीं, और जो अल्लाह ताला का रास्ता है उसके ऊपर चलते ही रहना, उसकी उससे हटना नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला इन आयात की हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा देना जो तुझसे ऐसा सौदा करने वाले हो। ऐ अल्लाह तू हमसे इस सौदे को कबूल कर लेगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم